मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। सप्तम अध्याय में अनुव्रतोगारी, अब अनुव्रतियों का वर्णन प्रारंभ किया है आचार्य महास्वामी ने। अनुव्रत क्या है तो उसका खुलासा आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है कि त्रस प्राण व्यपरोपणाम निवृत्त है, त्रस प्राणियों के व्यपरोपण से जो निवृत्त है वो अनुव्रति है, अहिंसा अनुव्रति है। अगारी त्याग अनुव्रतम स्नेह मोहादि वशात गृह विनाशी ग्राम विनाशी व कारण इत्यभिमता असत्य वचना निवृत्तो गृही। घर के विनाश में, गांव के विनाश में निमित्त भूत जो असत्य वचन होते हैं उससे जो निवृत्त है उसके जो त्यागी है ऐसे गृहस्थ द्वितीय अनुव्रति होते हैं। अन्य पीड़ा कर पार्थिव भयादि विषाद अवश्यम परित्यक्तम अपि यदत्तम ततः प्रतिनिवृत्तादर श्रावक इति तृतीय अनुव्रत। तीसरा अनुव्रत क्या है कि किसी की छोड़ी हुई वस्तु हो लेकिन दी हुई ना हो, पर पीड़ा कर पार्थिव भयादि वशात अवश्य परित्यक्तम। अन्य की को पीड़ा करने वाले जो पार्थिव यानी राजा होते हैं उनके भय आदि के कारण, उनके भय आदि के प्रभाव से अवश्य ही कोई वस्तु किसी ने छोड़ दी है लेकिन वो वस्तु यदि अपने को दी नहीं है तो ततः प्रति निवृत्त आदर, उसके प्रति अपना आदर नहीं रखना है, उसको छोड़ देना है, वो तीसरा अनुव्रत है अचौर्य। उपात्ताया अनुपात्तायाश्च परांगनायाः संगान निवृत्त रतिर गृहीति चतुर्थ अनुव्रत। विवाहित या अविवाहित पर स्त्री के संग से जिसकी प्रीति निवृत्त हो चुकी है ऐसा गृहस्थ ब्रह्मचर्य अनुव्रति होता है। धनधान्य क्षेत्रादीनाम इच्छा वशात कृत परिच्छेद गृहीति पंचम अनुव्रत। पर धन धान्य क्षेत्र आदि जो परिग्रह होते हैं उनमें अपने अभिप्राय पूर्वक जिसने सीमा बना ली है ऐसा गृहस्थ अनुव्रति होता है, परिग्रह परिमाण अनुव्रत का कार्य होता है। प्रश्न आता है क्या अनुव्रति बस इतने ही व्रतों में अपना काम चला लेता है या और भी कुछ होता है उसमें? तो आचार्य कहते हैं कि अन्योपि कश्चित अस्ति कश्चित अन्योपि त्यत आह, और भी कुछ है अनुव्रति के पास, इसलिए ये अगला सूत्र कह रहे हैं। दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणादिति संविभाग व्रत संपन्नश्च। अनुव्रति इन व्रतों से भी संपन्न रहता है, सात शील बता रहे हैं, तीन गुणव्रत और चार शिक्षा व्रत। दिग विरति, देश विरति, अनर्थ दंड विरति रति, एकानि त्रीणि गुणव्रतानि व्रत शब्द से सामान्य व्रत शब्द से प्रत्येक अभिसंबद्धात्। व्रत संबंध शब्द का संबंध सबके साथ जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे? दिग विरति व्रत, अनर्थ दंड देश विरति व्रत, अनर्थ दंड विरति व्रत, फिर सामायिक व्रत, प्रोषधोपवास व्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, अतिथि संविभाग व्रत। इन व्रतों से संपन्न गृहस्थ जो होता है विरता विरत इत्युच्यते, वही अनुव्रति कहा जाता है, विरता विरत इस तरह कहा जाता है। तद यथा उसका विस्तार करते हैं। दिक् प्राच्यादि दिशाएं जो पूर्व अधिक दिशाएं होती है, तत्र प्रसिद्ध ही अभिज्ञान ही अवधिं कृत्वा, कुछ प्रसिद्ध चिन्हों के माध्यम से अवधि बनाकर सीमा बनाकर नियमनम दिग् विरत व्रतम, एक नियम कर लिया आजीवन के लिए, एक सीमा बना ली, उसका नाम दिग् विरति व्रत है। यहां पर यम और नियम का विकल्प न करके नियमन का अर्थ यहां पर एक संकल्प है। ततो बहिस् त्रसस्थावर व्यपरोपण निवृत्तेर महाव्रतत्व मवसेयम, और सीमा के बाहर त्रसस्थावर दोनों की हिंसा का त्याग हो जाने के कारण महाव्रतीपना निश्चित किया जाए, निश्चित करने योग्य है। तत्र लाभे सत्यपि, मान लो सीमा के बाहर कोई लाभ मिल रहा है, लाभ होने पर भी परिणामस्य निवृत्ते ही लोभ निराशस्य कृतो भवति, लाभ होने पर भी वहां के परिणाम से निवृत्ति होने के कारण अपने भाव ही नहीं है वहां के, उसके कारण लोभ का भी त्याग हो जाता है। ग्रामादीनाम अवधृत परिमाणो प्रदेशो देश परिमाण प्रदेशो देश, गांव अधिक गांव आदि के एक सीमित क्षेत्र को देश कहते हैं। ततो बहिर्निवृत्ति देश विरति व्रतम, उससे बाहर का त्याग कर देना देश विरति व्रत है। पूर्ववत पहले के समान ही, अगर आपने सीमा के बाहर का त्याग किया है तो सीमा के बाहर महाव्रत हो जाएगा। बहिर् महाव्रतत्वं व्यवस्थाप्यम्, असत्य उपकारे पापादान हेतु अनर्थ दंड, बहुत सुंदर परिभाषा दी, जिसमें किसी का भला नहीं हो रहा है, ऐसी मन वचन काय की प्रवृत्तियों का नाम अनर्थ दंड है और केवल पाप का आश्रय होता है उससे। ततो विरते रनर्थ दंड विरते, उससे विराम ले लेना अनर्थ दंड विरति। अनर्थ दंड पंचविध, वो अनर्थ दंड पांच प्रकार का है। पहला अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादचरितम प्रमादाचरितम, हिंसा प्रदानम, अशुभश्रुति रति, ये पांच भेद है। अब उन पांचों का वर्णन कर रहे हैं। तत्र परेशान जय पराजय जय पराजय वधबंधांगच्छेद परस्वहरणादि कथन स्यादिति मनसा चिंतन अपध्यानम, किसी की पराजय कैसे हो, किसी की विजय कैसे हो, किसी की पिटाई कैसे हो, कोई बंधन में कैसे पड़े, किसी के शरीर के अंग कैसे कट जाएं, दूसरों के धन का हरण कैसे हो, इस तरह से मन से विचार करते रहना अपध्यान है, ये अनर्थ दंड है। व्यर्थ में पाप का आश्रय होता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। फिर तिर्य क्लेश वाणिज्य प्राणिवध कार, तिर्य क्लेश वाणिज्य प्राणिवध कारंभ कादिश प्राणिवध कारंभ कादिश, तिर्यंचों को क्लेश पहुंचाने वाले और जो व्यापार धंधे हैं जिसमें जानवरों को तकलीफ पहुंचती, और प्राणियों की जिसमें जानवरों से मारपीट वगैरह भी होती है, ऐसे आरंभ आदि आजीविका आदिकों में पाप संयुक्तम वचन, पापों से संयुक्त वचन का इस्तेमाल करना पापोपदेश है, वो पापोपदेश है। फिर प्रयोजन अंतरेण, बिना किसी उद्देश्य के वृक्षादिक छेदन, भूमि कुट्टन, सलिल सेचनाद, द्यवद्य कार्य प्रमादाचरितम, बिना मतलब बिना किसी उद्देश्य के वृक्ष आदि का काटना, धरती को कूटना, पानी को का सिंचन करना बिना मतलब के, तो बाहर बरसात गिर रहे और आप पानी डाल रहे हो पौधों को, तो ऐसी निरर्थक जो प्रवृत्तियां होती है अवध्य कार्य पाप कार्य, वो प्रमाद आचरित कहलाता है। फिर हिंसा प्रदान किसको कहते हैं, विष, कंटक, शस्त्राग्नि, रज्जु, कशा, दंडादि हिंसोपकरण प्रदानम, हिंसा प्रदानम। विष है, कंटक यानी कांटे, मछली पकड़ने वाले कांटे होते हैं, फिर शस्त्र यानी हथियार होते हैं, आयुध, फिर अग्नि है, फिर रज्जु यानी रस्सी है, कशा यानी चाबुक है, हंटर जिसको बोलते हैं, फिर दंड यानी डंडा है, आदि हिंसक उपकरणों को प्रदान करना हिंसा प्रदान नाम का अनर्थ दंड है। हिंसागारादिक प्रवर्धन दुष्ट कथा, हिंसा रागादि, हिंसा रागादि प्रवर्धन दुष्ट कथा, श्रवण शिक्षण व्यापृति अशुभ श्रुति, हिंसा और रागादिक को बढ़ाने वाली जो दुष्ट कथाएं हैं उनको सुनने में और उनकी शिक्षा देने की प्रवृत्ति करने में तत्पर होना अशुभ श्रुति नाम का अनर्थ है। इस तरह ये गुणव्रतों की चर्चा हुई। फिर शिक्षा व्रत, सम एक ही भाव में वर्तते, सम शब्द जो है वो एक ही भाव में वर्तता है, एकमेक हो जाने को सम कहते हैं। तद्यथा संगतम घृतम, संगतम तैलम इत्युच्यते, जैसे संगत घी है, मतलब पूरे सब्जी भात वगैरह में घी एकमेक है, संगतम तैलम इत्युच्यते, पूरे भजी में पूरा तेल ही तेल है, ये सब कहा जाता है एक ही भूत है, इससे जाना जाता है कि सब बिल्कुल उसी से दोनों एकमेक हो गए हैं। एकत्वेन अयनम गमनम समय, एक रूप से गमन करना समय है, समय ही सामायिक और वह समय ही सामायिक है, समय प्रयोजनमस्ति वा विग्रह सामायिक, अथवा ऐसा भी विग्रह कर सकते हैं कि समय यानी एक रूप हो जाना अपने शांत चित्त होकर के, उसका नाम समय है, वो जिसका उद्देश्य है उसको सामायिक कहते हैं, इकरण प्रत्यय अठक प्रत्यय कहते हैं व्याकरण। फिर इति देशे एतावति काले इत्यवधारिते सामायिके सतस्य महाव्रतत्वं पूर्ववत् विदितव्यम्, इतने स्थान पर इतने समय तक निश्चित कर लेने वाले सामायिक के निश्चित किए जाने पर और उस सामायिक में स्थित होने वाले जो श्रावक हैं उनके लिए महाव्रत जो होता है वो पहले के समान ही जान लेना। अणुस्थूल कृष्ण, अनुस्थूल कृत हिंसादि निवृत्ते संयम प्रसंग न तद्घाति कर्मोदय, तद्घाति कर्मोदया सद्भाव, तद्घाति कर्मोदय सद्भाव, दया सद्भाव, तद्घाति कर्मोदय सद्भावात्। दूसरी सर्वार्थ सिद्धि की प्रति में सद्भाव पाठ है, इसमें असद्भाव था और भूल से या प्रेस के उससे हो गया होगा। वास्तव में ऐसा है कि हाँ, इसको अगर महाव्रत है तो फिर संयम क्यों नहीं मान लेते हैं? आप अणुव्रती क्यों कह रहे हैं उनको? सकल संयम ही स्वीकार कर लो। तो आचार्य कहते हैं कि नहीं, सकल संयम को घातने वाले कर्म का उदय वहां विद्यमान है, इसलिए अभी सकल संयम नहीं रहेगा। प्रोषद शब्द पर पर्व पर्याय वाची, प्रोषद शब्द पर्व का पर्याय वाचक है। शब्दादि ग्रहण प्रति निवृत्त औत्सुक्या पंचापी इंद्रियाण निपेत्य तस्मिन वसंती उपवास। इंद्रियों के विषयों के प्रति छूट गया है उत्साह जिनका, ऐसी पांचों इंद्रियों के समीप आकर वहां निवास करना उपवास कहलाता है। यानी विषय रहित इंद्रियों के निकट निवास करना उपवास है। सीधा सीधा हो गया कि उपवास के दिन सांसारिक सुखों का त्याग करना है, कि भोजन का भी त्याग करना है, भोजन के साथ साथ कषाय विषय और आहार सबका त्याग करना है। चतुर्विध आहार परित्यागे इत्यादि, सीधा अर्थ ये हुआ कि चार प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। प्रोषध उपवास है, प्रोषध उपवास है, पर्व के दिन उपवास करना प्रोषध उपवास है। और क्या? स्वशरीर संस्कार कारण है, अपने शरीर में संस्कार, शरीर की सजावट में कारण हो जो स्नान है, गंध माल्य आदि, गंध माल्य आभरण आदि विरहित। तो अपने शरीर की सजावट के लिए जो स्नान कर रहा है उससे गंध माल्य आदि और आभरण आदि से रहित होकर एकदम सादगी के साथ शुभावकाशी अच्छे स्थान पर, साधु निवास है, साधुओं के स्थान पर भी जा सकते हैं उपवास के दिन। चैत्यालय स्वप्रोषद उपवास गृह वा, अथवा चैत्यालय में जाकर के रुक गए, या अपने ही घर पर जो प्रोषद उपवास का कक्ष है, कोई उपवास में आप धर्म ध्यान करने का जो स्थान है अपने घर पर, वहां पर चले गए। धर्म कथा चिंतना वही, चिंतना वहितांत करण सन्नुपवसे निरारंभ श्रावक। काम धंधे छोड़ करके धर्म कथा में, चिंतन में अवहित अंतःकरण, अपने अंतःकरण तल्लीन करके उस तरह से होते हुए उपवास करने योग्य है। किसके द्वारा? निरारंभ श्रावक, आरंभ रहित श्रावक के द्वारा। उपभोगो शन पान गंध माल्यादि, उपभोग में भोजन आता है, पान यानी पीने की वस्तुएं आती हैं, गंध माल्यादि आते हैं, माला वगैरह अथवा जो सुगंध वगैरह होती है, इत्र वगैरह। परिभोग, ये उपभोग हुआ, परिभोग क्या है? आच्छादन प्रावरण, आच्छादन प्रावरण अलंकार शयनासन गृहयान वाहन आदि परिभोग में आते हैं। आच्छादन यानी अपने शरीर को ढांकने के लिए प्रावरण वस्त्र आदि हैं, फिर अलंकार यानी जो अपने आभूषण हैं, फिर शयन यानी पलंग है, बार बार इनका उपयोग होता है, आसन यानी बैठने का स्थान है, कुर्सी वगैरह, फिर गृह यान घर भी है, यान वाहन आदि। यान वाहन का मतलब होता है जिसमें यात्रा करते हैं वो यान है, जिसमें वाहन, वाहन का जिसमें वजन ले जाते हैं वो वाहन है। तो आदि शब्द से ऐसे और भी वस्तुएं हो सकती है। तयो परिमाण, उसमें परिमाण कर लेना, उन दोनों का परिमाण करना, उपभोग का और परिभोग का। परिमाण उपभोग, परिभोग परिमाण। और फिर इसमें साथ में ये कह रहे हैं कि जो परिमाण कहे उपभोग परिभोग के, उसमें ये जान लो पहले कि कौन सी वस्तुएं जैन श्रावक के उपभोग परिभोग में नहीं आती, अर्थात कौन सी वस्तुएं अभक्ष है वो बता रहे। मधु मांसम मद्यंश सदा परिहर्तव्य, तस घात निवृत्त चेतस, तस घात से निवृत्त हो गया है मन जिसका, अर्थात जिसके मन में कभी त्रस घात का विचार नहीं आता उसको शहद मांस और मदिरा का हमेशा के लिए त्याग करने होंगे। केतक के अर्जुन पुष्पादि ने केतकी और अर्जुन के जो पुष्पादिक हैं उनको श्रृंगवेर मूलकादि ने, फिर जो श्रृंगवेर आर्द्राणी श्रृंगवेराणी रत्नकरण में निकला था, गीले अदरक और मूलक रेडिश आदि बहु जंतु योनि स्थानानि, बहुत से वनस्पति का एक जीव उसमें निगोदिया जीव उसमें निवास करते हैं, तो इसलिए अनंत काय व्यपदेश आरहाणी, वो अनंत काय इस नाम के योग्य होते हैं। परिहर्तव्यानि, वो त्याग करने योग्य है। बहुघात अल्प फलत्वात्, क्योंकि उसमें घात ज्यादा होता है स्वाद थोड़ा आता है। यान वाहन आभरणादिश एतावदेव इष्टम अतो न्यत अनिष्टम इत्यनिष्टात् निवर्तनम् कर्तव्यम्। यान वाहन आदि में इतना ही मेरे लिए इष्ट है और इससे बाहर मेरे लिए इष्ट नहीं है, अनिष्ट है, तो इसलिए अनिष्ट का त्याग कर देना। कालनियम यावत जीव व यथाशक्ति, जैसी शक्ति हो वैसे समय की सीमा तक कर सकते थे आप, अथवा जीवन भर के लिए कर सकते हैं। संयम अविनाशय नतति इत्यतिथि, संयम का नाश न करते हुए जो भ्रमण करते हैं आचार्य आदि को वो अतिथि कहलाते हैं, अथवा नास्य तिथिरस्ति इत्यतिथि, अथवा इनकी तिथि नहीं होती इसलिए अतिथि कहलाते हैं। अनियत कालागमन इत्यर्थ, असमय में आ जाने वाले अतिथि कहलाते हैं। अतिथि ही संविभागो अतिथि संविभाग, उनके लिए संविभाग कर देना, अपना भोजन बनाए उसमें से कुछ हिस्सा उनको भी दे देना, वो अतिथि संविभाग है। स चतुर्विध, उसके चार भेद क्या क्या दे सकते हैं आप, तो भिक्षोपकरण औषध प्रतिश्रय भेदा, भिक्षा दे सकते हैं उनको, उपकरण दे सकते हैं पिछली कमंडल शास्त्र, फिर औषध दे सकते हैं और प्रतिश्रय यानी ठहरने का स्थान दे सकते हैं। मोक्ष मार्गम मोक्षार्थम अभ्युद्यताय आतिथे संयम परायणाय शुद्धाय शुद्ध चेतसा निर्वद्या भिक्षा दिया, इसको और स्पष्ट कर रहे हैं कि मोक्ष के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं ऐसे अतिथि के लिए जो संयम में परायण है उनके लिए और जो शुद्ध है उनके लिए शुद्ध मन से निर्दोष भिक्षा देने योग्य है। धर्मोपकरणानि च, धर्म के जो उपकरण है वो भी देने योग्य है। सम्यक दर्शनाद्युप ब्रह्मणानि दातव्यानि, लेकिन वो कैसे हो, धर्म के उपकरण सम्यक दर्शन आदि की वृद्धि करने वाले हो वो उनको दान में देना। औषधमपि योज्यम उपयोजनीयम, औषध की भी उनके लिए व्यवस्था कर लेना। प्रतिश्रेयश्च परम धर्म श्रद्धया प्रतिपादयितव्य, और ठहरने का स्थान भी बड़ी धर्म की श्रद्धा के साथ में प्रदान करना। च शब्द वक्षमाण गृहस्थ धर्म समुच्चयार्थ, च शब्द जो इसमें आया है वो आगे कहे जाने वाले गृहस्थ धर्म का संग्रह करने के लिए आया है, और वो धर्म क्या है तो उसके विषय में चर्चा आगामी सूत्र में करेंगे। आज अपन ने सात व्रतों की चर्चा की और पहले के पांच अणुव्रत का भी अणुव्रत के रूप में वर्णन किया, पहले के पांच व्रत थे अब यहाँ अणुव्रत समझे अपन ने, तो 12 व्रतों का वर्णन पूर्ण करके अंतिम व्रत संलेखना का वर्णन आगे किया जाएगा। जय नम जय सुशासन।